दोस्तों आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति पद के लिए यूएस सेंट्रिक अप्रोच ने ऑकस समझौते के बारे में चिंताएं पैदा करनी शुरू कर दी हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पर कितना निर्भर है, ये ऑकस समझौता है क्या और ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक पहुँचा कैसे है, ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दलबीर अहलावत जी। आपको बता दूं कि उन्होंने 15 साल से भी ज्यादा समय तक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज जैसे मुद्दों पर रिसर्च की है। दलबीर जी, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू भव्या जी।
तो दलबीर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो ऑकस अग्रीमेंट है, ये असल में है क्या?
देखियो, ऑकस एग्रीमेंट तीन देशों के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स।
जी।
इसमें क्या है कि ये तीनों देश मिलके 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाएंगे, जिस जो कि 2050 तक ऑस्ट्रेलिया को सौंप दी जाएगी और इसकी कीमत है $300 बिलियन। ये अभी जो परिप्रेक्ष्य है कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अभी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है और उस शिफ्ट होने में ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर काफी दबाव है। तो उसको देखते हुए ये तीनों देशों ने मिलके ये ऑकस एग्रीमेंट साइन किया है और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है।
जी जी। तो दलबीर जी, ऐसे में जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी बार US के राष्ट्रपति बन गए हैं, कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ऑकस समझौते पर भी असर पड़ सकता है, तो ये पूरा मामला क्या है?
देखिए, इसमें क्या है कि अभी जो दूसरी बार जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं।
जी।
और उनमें आता है कि अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरी चीजें होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि अमेरिका अलोन, अमेरिका अकेला नहीं कर सकता, अमेरिका को पार्टनर चाहिए। तो उस पार्टनरशिप में क्या है कि अभी क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इनके इनके जैसे अलायंस पार्टनरशिप है वो जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और उस अलायंस पार्टनरशिप के बगैर अमेरिका इस रीजन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उनको बेस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये तीनों ही देश बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
जी। एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि US ने जो हाल ही में टैरिफ्स को लेकर अपने नए रेगुलेशंस और नई घोषणाएं की हैं, ये ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पर किसी तरह का प्रभाव डाल सकते हैं और कैसा होगा ये प्रभाव?
देखिए, इसमें क्या है कि ये जो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है US एडमिनिस्ट्रेशन ने।
जी।
लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, टोटल ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट का 0.2% स्टील अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, 0.2% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। और ये दूसरे हिसाब से आंकड़ों से देखें हम तो ये 10 ऑस्ट्रेलिया के 1.5 मिलियन मीट्रिक टन एल्यूमिनियम का ये सिर्फ 10% है, और अमेरिका में ये 2.5% अमेरिका के टोटल एल्यूमिनियम इम्पोर्ट का हिस्सा है। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टोटल एक्सपोर्ट का ये 0.2% है, तो इसका ये जो इम्पैक्ट वो मोडेस्ट ही रहेगा इकोनॉमिकली। लेकिन इसमें क्या आता है कि जो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिलेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमी का अलग होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इससे खुश नहीं है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि ये अनजस्टिफाइड है, और आगे और भी कहा कि ये एक फ्रेंडली एक्ट नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हर वॉर में या और किसी भी सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन ये इतना भी बड़ा इश्यू नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया रेसिप्रोकल मेजर्स ले या रिटेलिएशन करे, क्योंकि दोनों का सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है।
दलबीर जी, ऐसे में जो ये इंडो पैसिफिक, ये जो फ्री ट्रेड की बात है, इसमें कहीं क्या किसी भी तरह से भारत इन्वॉल्व्ड है?
देखिए, भारत का भी अपना इन देशों के बाहर का भी, जैसे एक तो क्वेड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग,
जी
उसमें चार देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बदलते हुए जो सिक्योरिटी की स्थिति है इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो उसके लिए ये चारों देश मिलकर एक फैसला करते हैं या एक डायलॉग है, उसमें ये अपना सिचुएशन को देखते हैं टाइम टू टाइम। और ये हायर लेवल पे होता है, या तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं। जैसे कि अभी ये 2025 में ये इंडिया में होगी, इसका समिट इंडिया में होगी, तो लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप भी इंडिया में विजिट करेंगे साल के अंत तक। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बायलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसी तरह इंडिया और जापान के भी रिलेशंस हैं। तो ये इकट्ठे चारों देश इकट्ठे मिलकर ये मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं और दूसरी भी नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि इंटरऑपरेटेबिलिटी के ऊपर भी ज्यादा अभी फोकस बढ़ता जा रहा है। और जो अभी ये टैरिफ का जो इशू आया है, ये मेरे ख्याल से इन तीनों देशों को, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान को ज्यादा नजदीक लेके आएगा, क्योंकि अमेरिका के बाद जापान का दूसरा बड़ा पार्टनर ऑस्ट्रेलिया है। दोनों का इंटरऑपरेटेबिलिटी भी है, जापान की मिलिट्री यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ सकती है एक्सरसाइजेस के लिए, ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जापान में जा सकती है। अब इंडिया के साथ इतना नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ जो है कि इनका शिप इंडिया में जा सकते हैं।
जी जी,
तो उस हिसाब से ये देखे कि तीनों देशों में आपस में ज्यादा संबंध बड़े मजबूत होते जा रहे हैं।
जी दलबीर जी, आज आपका SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और इस संदर्भ में हमें और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
भव्या जी, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।